एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो हमें हर पल हर सेकंड महसूस होती है, लेकिन जिसके बारे में हम शायद सबसे कम सोचते हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। हम सबने न्यूटन और सेब वाली कहानी तो सुनी ही है, लेकिन आज की हमारी चर्चा उस कहानी से बहुत बहुत आगे की है।
बिल्कुल, आज हम बात करेंगे कि ग्रेविटी असल में कोई खींचने वाली शक्ति है ही नहीं। ये स्पेस और टाइम के मुड़ने की कहानी है, ब्रह्मांड के आर्किटेक्चर की। और ये सब हम समझेंगे टिमोथी क्लिफ्टन की शानदार किताब ग्रेविटी के जरिए।
हाँ, जो इस विषय को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे फोन का GPS, सब कुछ इसी समझ पर टिका है।
सही बात है, ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग जर्नी को शुरू करते हैं।
चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये जानना जरूरी है कि टिमोथी क्लिफ्टन हैं कौन, मतलब इस इतने मुश्किल विषय पर लिखने के लिए उनमें ऐसी क्या खास बात है।
ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही इस किताब को खास बनाता है। देखिए, टिमोथी क्लिफ्टन सिर्फ एक साइंस कम्युनिकेटर नहीं है जो दूसरों के काम को आसान भाषा में समझाते हैं। वो लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में एक एक्टिव थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट हैं।
अच्छा,
मतलब वो खुद इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं।
तो वो सिर्फ कहानी सुना नहीं रहे, वो खुद उस कहानी का एक हिस्सा है।
Exactly. वो आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी और ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी संरचनाओं पर काम करते हैं, इसलिए जब वो लिखते हैं तो आप महसूस कर सकती हैं कि ये किसी सुलझी हुई पहेली का जवाब नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है। वो हमें सिर्फ वो नहीं बताते जो हम जानते हैं, बल्कि वो भी जो हम नहीं जानते, और जहां आज के वैज्ञानिक असल में काम कर रहे हैं। यही चीज उनकी बातों में एक अलग ही वजन और प्रामाणिकता लाती है।
ठीक है, तो एक असली जासूस से कहानी सुनने में ज्यादा मजा आएगा। तो फिर इस किताब का कोर आइडिया क्या है? क्लिफ्टन इस जानी पहचानी कहानी को किस अलग नजरिए से देखते हैं?
तो किताब का जो कोर आइडिया है वो ये है कि ग्रेविटी को समझने की हमारी जर्नी असल में साइंस के एवोल्यूशन की कहानी है।
अच्छा,
ये कोई एक दिन में मिली जानकारी नहीं है, बल्कि हजारों साल का एक बौद्धिक सफर है। क्लिफ्टन हमें दिखाते हैं कि कैसे हर बड़ी छलांग ने हमारी पूरी हकीकत को बदल कर रख दिया।
मतलब ये सिर्फ ग्रेविटी की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के सोचने के तरीके के बदलने की कहानी है।
हाँ, कहानी शुरू होती है अरस्तू से, जिनकी सोच आज हमें बड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन उस जमाने के लिए वो लॉजिकल थी। फिर आते हैं न्यूटन, जो एक इनकलाब लेकर आए और उन्होंने जमीन और आसमान के नियमों को एक कर दिया, लेकिन उनकी थ्योरी में भी एक बहुत बड़ी पहेली थी
जिसका जवाब उनके पास नहीं था।
नहीं था, और उस पहेली को सुलझाने आए अल्बर्ट आइंस्टीन, और क्या खूब सुलझाया। आइंस्टीन ने सब कुछ पलट दिया। उन्होंने कहा, गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव है ही नहीं,
कोई शक्ति नहीं है,
कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है जो खाली स्पेस में काम करती है, यह सिर्फ ज्यामिति है, ज्योमेट्री। उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम एक चादर की तरह है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं, और भारी चीजें जैसे सूरज उस चादर को झुका देती हैं। पृथ्वी सूरज की तरफ खिंच नहीं रही, वो बस उस झुके हुए मुड़े हुए रास्ते पर लुढ़क रही है।
वाह, ग्रेविटी इज इन अ फोर्स, इट्स द शेप ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ।
एग्जैक्टली, इट चेंजेस एवरीथिंग।
ये सुनने में ही कितना बड़ा आइडिया लगता है, लेकिन आइंस्टाइन से पहले भी तो लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोचते थे, हजारों साल से। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है?
कहानी शुरू होती है अरस्तू से, और उनका आइडिया आज हमें बहुत अजीब लगेगा। लगभग 2000 साल पहले अरस्तू का मानना था कि ब्रह्मांड दो हिस्सों में बांटा है, एक हमारी धरती और दूसरा आसमान, और दोनों के नियम बिल्कुल अलग अलग हैं।
मतलब वन कंट्री टू सिस्टम्स जैसा कुछ।
हाँ, कुछ वैसा ही। उनका मानना था कि धरती पर चीजें जैसे पत्थर या पानी इसलिए नीचे गिरती हैं क्योंकि उनकी एक प्राकृतिक जगह है, नेचुरल प्लेस, जो कि पृथ्वी का केंद्र है।
अच्छा, तो हर चीज अपने घर वापस जाना चाहती है।
बिल्कुल, वहीं आसमान में चांद, सूरज, तारे, ये सब एक दिव्य पदार्थ ईथर से बने हैं, और उनका स्वभाव है हमेशा गोल गोल घूमना।
तो उस जमाने में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जो नियम एक पत्थर पे लागू होता है वही चांद पर भी लागू हो सकता है। दोनों अलग दुनियाएं थीं।
बिल्कुल, ये सोचना ही नामुमकिन था, और यही सोच लगभग 2000 साल तक चली। फिर 17वीं सदी में आए सर आइजैक न्यूटन, और उन्होंने जो किया वो विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी छलांगों में से एक था।
सेब वाली कहानी, उन्होंने देखा कि सेब नीचे गिर रहा है और चांद आसमान में है और उन्होंने दोनों को जोड़ दिया।
हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने पहली बार ये कहा कि जमीन और आसमान के नियम अलग नहीं हैं, एक ही नियम है।
एक ही है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
हाँ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जिस शक्ति से सेब जमीन पर गिरता है, ठीक उसी शक्ति से चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज का। उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया जो ग्रहों की चाल से लेकर ज्वार भाटे तक सब कुछ समझा सकता था।
ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन जैसा आपने पहले कहा, उनकी थ्योरी में एक पहेली थी, एक ऐसा सवाल था जो खुद न्यूटन को भी परेशान करता था।
हाँ, और वो पहेली थी एक्शन एट अ डिस्टेंस।
एक्शन एट अ डिस्टेंस
मतलब सूरज पृथ्वी को करोड़ों किलोमीटर दूर से बिना किसी तार या माध्यम के तुरंत कैसे खींच लेता है, ये जादू जैसा लगता था।
अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या पृथ्वी तुरंत अपनी कक्षा से भटक जाएगी?
न्यूटन के फॉर्मूले के हिसाब से तो हाँ, ये बात उन्हें खुद भी बहुत अजीब लगती थी।
तो उन्होंने एक दरवाजा खुला छोड़ दिया जिसमें लगभग 200 साल बाद आइंस्टाइन ने कदम रखा।
बिल्कुल, और आइंस्टीन ने इस सवाल का जवाब देने के लिए जो रास्ता चुना वो कमाल का था। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया,
मन में एक प्रयोग।
हाँ, मन में उन्होंने सोचा, कल्पना कीजिए कि आप एक बंद लिफ्ट में हैं जिसमें कोई खिड़की नहीं है और ये लिफ्ट अंतरिक्ष में ऊपर की ओर 9.8 ms² की रफ्तार से एक्सेलरेट हो रही है।
ये तो वही एक्सेलरेशन है जो धरती की ग्रेविटी का होता है।
एग्जैक्टली, तो लिफ्ट में आपको अपने पैरों पर ठीक वैसा ही वजन महसूस होगा जैसा धरती पर होता है। अगर आप कोई गेंद गिराएंगी तो वो सीधे लिफ्ट के फर्श पर गिरेगी। आप कोई भी प्रयोग कर लें, आप ये बता ही नहीं सकती कि आप धरती पर हैं या एक तेज होती हुई लिफ्ट में।
मतलब गुरुत्वाकर्षण और त्वरंग में कोई फर्क ही नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
यही आइंस्टीन का यूरेका मोमेंट था। इसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं और इसी एक विचार से पूरी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी निकली। यहीं से वो बड़ा आइडिया आया जिसे बाद में भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने खूबसूरती से एक लाइन में समेटा।
पदार्थ स्पेस टाइम को बताता है कि कैसे मुड़ना है और मुड़ा हुआ स्पेस टाइम पदार्थ को बताता है कि कैसे चलना है।
बिल्कुल, इसे समझने के लिए वो चादर वाला उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए, एक बड़ी सी चादर को चार लोगों ने कसकर पकड़ा हुआ है, ये हमारा स्पेस टाइम है। अब अगर आप बीच में एक भारी बोलिंग बॉल रख दें तो क्या होगा?
चादर बीच में धस जाएगी, मुड़ जाएगी।
सही, और अब अगर आप एक छोटा सा कंचा उस चादर पर लुढ़काएं तो वो सीधी लाइन में जाने के बजाय उस बोलिंग बॉल के चारों ओर बने गड्ढे में घूमने लगेगा। वो कंचा सोच रहा है कि उसे कोई खींच रहा है, लेकिन असल में वो बस उस मुड़े हुए स्पेस टाइम में अपना सबसे सीधा रास्ता ले रहा है।
तो पृथ्वी भी सूरज की तरफ खिंच नहीं रही, वो बस उस रास्ते पर चल रही है जिसे सूरज के वजन ने मोड़ दिया है। वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। लेकिन ये सिर्फ एक सुंदर विचार था या इसे साबित भी किया गया?
विज्ञान में सिर्फ सुंदर विचार काफी नहीं होते, सबूत चाहिए। और सबूत एक एक करके आने लगे। पहला सबूत मिला बुध यानी मर्क्यूरी ग्रह की कक्षा से। सदियों से खगोल शास्त्री देख रहे थे कि उसकी कक्षा थोड़ी अजीब तरह से डगमगा रही थी, जिसे न्यूटन का नियम पूरी तरह नहीं समझा पा रहा था।
अच्छा,
लेकिन आइंस्टीन के समीकरणों ने इसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी की, पॉइंट बाय पॉइंट।
और फिर वो सबसे मशहूर सबूत आया 1919 के सूर्य ग्रहण वाला, जिसने आइंस्टीन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया।
आइंस्टाइन की थ्योरी कहती थी कि अगर गुरुत्वाकर्षण स्पेस को मोड़ता है तो सूरज के पास से गुजरने वाली रोशनी को भी मुड़ जाना चाहिए। 1919 में सर आर्थर एडिंगटन एक टीम लेकर अफ्रीका गए और सूर्य ग्रहण के दौरान उन्होंने दूर के सितारों की तस्वीरें ली।
और उन्होंने देखा
कि जो सितारे सूरज के किनारे पर दिख रहे थे उनकी पोजीशन थोड़ी सी हटी हुई थी। क्यों? क्योंकि उनकी रोशनी सूरज के गुरुत्वाकर्षण से मुड़ गई थी। ये खबर जब अखबारों में छपी तो दुनिया भर में तहलका मच गया।
और फिर आया सबसे आधुनिक और सबसे जबरदस्त सबूत, आइंस्टाइन की भविष्यवाणी के ठीक 100 साल बाद 2015 में, गुरुत्वाकर्षण तरंगे,
ग्रेविटेशनल वेव्स।
हाँ,
ये तो एक पूरी नई कहानी है। आइंस्टाइन ने कहा था कि जब भी कोई बहुत भारी चीजें जैसे ब्लैक होल एक दूसरे से टकराते हैं तो वो स्पेस टाइम की चादर में लहरें पैदा करती हैं, जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से होती हैं।
और ये लहरें
अरबों सालों तक ब्रह्मांड में सफर करती हैं। 2015 में लाइगो ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसी ही लहरों को पकड़ा जो 1.3 अरब साल पहले दो ब्लैक होल के टकराने से पैदा हुई थीं।
एक मिनट, इसका मतलब है कि अब हम ब्रह्मांड को सिर्फ देख नहीं सकते, हम उसे सुन भी सकते हैं, हम ब्लैक होल के टकराने जैसी घटनाओं की आहट को महसूस कर सकते हैं?
बिल्कुल,
ये तो खगोल विज्ञान में एक नई इंद्रिय, एक नया सेंस मिलने जैसा है।
बिल्कुल सही कहा, ये एक नई खिड़की है जिससे हम ब्रह्मांड के सबसे हिंसक और अंधेरे कोनों में झांक सकते हैं। तो लगा कि चलो अब हमने गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह समझ लिया है, कहानी पूरी हो गई, पर ब्रह्मांड ने कहा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
और फिर एंट्री हुई विलेन की, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी।
सही पहचाना, 1970 के दशक में वेरा रूबिन जैसी खगोल विधों ने देखा कि आकाश गंगाओं के बाहरी किनारों पर जो तारे हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं। आइंस्टाइन की थियोरी के हिसाब से जितनी ग्रेविटी हमें दिख रही थी उससे तो उन तारों को उड़कर अंतरिक्ष में बिखर जाना चाहिए था।
मतलब कुछ तो था जो उन्हें पकड़ कर रखे हुए था, कोई अदृश्य चीज।
हाँ, कोई अदृश्य गोंद, और इसी को डार्क मैटर का नाम दिया गया। एक ऐसा रहस्यमयी पदार्थ जो रोशनी से कोई इंटरैक्शन नहीं करता, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका वजन और गुरुत्वाकर्षण पूरी आकाशगंगा को बांधे हुए हैं।
और कमाल की बात यह है कि ये नॉर्मल मैटर से 5 गुना ज्यादा है।
5 गुना ज्यादा, मतलब हमारे आसपास, हमारे आर पार से ही गुजर रहा है और हमें पता भी नहीं। इट्स लिटरली अ गोस्ट हॉन्टिंग द यूनिवर्स।
और फिर इससे भी बड़ा रहस्य सामने आया, डार्क एनर्जी।
हाँ, 1990s के दशक के अंत में वैज्ञानिकों ने दूर की सुपरनोवा को देखकर ये पता लगाया कि हमारा ब्रह्मांड जो फैल रहा है वो धीमा होने की बजाय और तेज होता जा रहा है।
तेज हो रहा है?
हाँ, तेज, कोई अनजानी शक्ति से बाहर की तरफ धकेल रही है, जैसे कार का एक्सेलरेटर दबा दिया हो। इस रहस्यमय शक्ति को डार्क एनर्जी कहा गया।
और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है?
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है, और जो कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं और जानते हैं, सारे तारे, ग्रह, हम और आप, वो सब मिलाकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है।
सिर्फ 5%? मतलब हम 95% ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं जानते।
हर बार जब हमें लगता है कि हम गुरुत्वाकर्षण को समझ गए हैं तो ब्रह्मांड नए रहस्य सामने लाता है जो हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराते हैं।
यही विज्ञान की खूबसूरती है, ये सफर कभी खत्म नहीं होता।
ये सब सुनने में बहुत सैद्धांतिक लगता है, लेकिन क्या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, और सबसे बड़ा उदाहरण है GPS जो हम सबके फोन में है। GPS सिस्टम सैटेलाइट्स पर निर्भर करता है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। अब आइंस्टीन की थ्योरी के 2 पहलू हैं। पहला स्पेशल रिलेटिविटी जो कहती है कि तेज चलने वाली घड़ियां धीमी हो जाती हैं। दूसरा जनरल रिलेटिविटी जो कहती है कि ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाली जगह पर घड़ियां धीमी हो जाती हैं।
ठीक है, तो GPS सैटेलाइट्स बहुत तेज चल रहे हैं, मतलब उनकी घड़ियां धीमी होनी चाहिए।
लेकिन वो पृथ्वी से दूर भी हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण कम है तो उनकी घड़ियां तेज भी होनी चाहिए।
करेक्ट।
और जब आप दोनों प्रभावों का हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण वाला प्रभाव ज्यादा मजबूत है। तो कुल मिलाकर सैटेलाइट पर मौजूद घड़ियां जमीन पर मौजूद घड़ियों से हर दिन लगभग 38 माइक्रोसेकंड तेज चलती हैं।
38 माइक्रोसेकंड, ये तो बहुत ही कम लगता है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा?
सुनने में कम लगता है लेकिन रोशनी की गति बहुत तेज होती है। अगर GPS सिस्टम में इस 38 माइक्रोसेकंड के अंतर को हर रोज ठीक ना किया जाए तो लोकेशन में हर दिन लगभग 10 किलोमीटर की गलती आने लगेगी।
10 किलोमीटर?
हाँ, आपका ऊबर आपके घर की बजाय किसी और मोहल्ले में पहुंच जाएगा।
एक मिनट, मतलब अगर आइंस्टाइन ना होते तो ऊबर, जोमैटो, गूगल मैप्स ये सब भी नहीं होते? ये सोचना ही अजीब है कि 100 साल पुरानी एक थ्योरी आज हमारे लंच ऑर्डर को कंट्रोल कर रही है।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सबसे गहरी और सिद्धांतिक खोजों का भी एक दिन व्यवहारिक असर होता है। लेकिन इसका एक और गहरा प्रभाव है जो हमारे सोचने के तरीके से जुड़ा है। आइंस्टाइन ने सफलता इसलिए पाई क्योंकि उन्होंने उन बुनियादी धारणाओं पर सवाल उठाया जिन्हें सदियों से सब सच मानते थे।
जैसे कि
स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है जो कभी नहीं बदलते। बिल्कुल, उन्होंने ये पूछने की हिम्मत की क्या होगा अगर जो हम सच मान रहे हैं वो सच ना हो। ये सबक तो किसी भी फील्ड में लागू हो सकता है, चाहे वो बिजनेस हो, कला हो या हमारी अपनी जिंदगी। असली तरक्की हमेशा बुनियादी धारणाओं पर सवाल उठाने से ही होती है।
तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं, मेरे लिए जो सबसे आश्चर्यजनक बात निकल कर आई वो ये है कि जो शक्ति हमें सबसे ज्यादा परिचित लगती है, जिसे हम हर पल महसूस करते हैं, वही भौतिकी में सबसे कम समझी गई है। ये हमें याद दिलाता है कि जानने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। हम सोचते हैं कि हम विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की कहानी बताती है कि हर जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। हमारी सबसे बेहतरीन थ्योरी जनरल रिलेटिविटी हमें यह भी बताती है कि हम ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही समझते हैं, बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये एहसास हम्बलिंग भी है, यानी हमें हमारी औकात याद दिलाता है, और साथ ही ये रोमांचक भी है क्योंकि ये दिखाता है कि खोज करने के लिए एक पूरा नया ब्रह्मांड बाकी है। ये भविष्य की पीढ़ियों के वैज्ञानिकों के लिए दरवाजे खोलता है कि वो आएं और इन रहस्यों से पर्दा उठाएं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।